नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जी से। नमस्कार सर जी।
हाँ नमस्कार सर। नमस्कार
सर जी। जैसा कि अभी हाल ही में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप पांडुना और सौसल में एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हो और सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो और छात्रों के लिए गांव-गांव जाकर उन्हें प्रेरित भी कर रहे कि किस तरह वो भविष्य की तैयारियां करें, तो छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर हम आपसे आज जानना चाह रहे कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र उत्तीर्ण हुए, इन्होंने आगे की तैयारी कैसी करनी चाहिए।
ये सवाल बहुत ही अच्छा आपने लिया है और मैं इस विषय पे कहना भी चाहूंगा कि अभी जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, तो सबसे पहले हमको अपने अंतर्मन से एक सवाल करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा होता है। अब बच्चों के सामने ये समस्या होती है कि भाई मैं विषय का चयन कैसे करूं, तो मैं उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका बताना चाहूंगा कि जिस विषय को अपन लेना चाहते हैं उसके कुछ सवालों को हल करके जानना चाहिए कि अपने से बनती कि नहीं बनती। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। पहले उस विषय को पढ़ लीजिए जिस विषय को आपको लेना है, उस विषय को पढ़ के फिर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विषय आपके मन से संबंधित ताल्लुक रख रहा है कि नहीं रख रहा है। दूसरा होता है, हमारा इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है सब्जेक्ट में, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लंबे समय तक उस विषय के साथ नहीं चल पाते। जैसे अभी मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, लेकिन मेरा जो मस्तिष्क है वो आर्ट्स के विषयों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा रहा था। मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी और हिस्ट्री था, तो मैं देखा कि बड़ा अच्छा बन रहा। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप विषय लिखते हो उसकी मन में कल्पना बननी चाहिए आपके। यदि उसकी कल्पना बनती है तो आप उस विषय को बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से और बिना किसी तनाव के आप पढ़ सकते हैं। अभी हो क्या रहा है कि जगह जगह पे जैसे रिजल्ट आए तो सारे कोचिंग संस्थान भोपाल इंदौर इधर उधर सब कॉलेज वाले जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये करिए वो करिए, पर उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ना तो बच्चे का पिता डिसाइड कर पा रहा, ना माँ डिसाइड कर पा रही, ना बच्चा डिसाइड कर पा रहा। उसका भविष्य डिसाइड कौन कर रहा है? कोचिंग वाले। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बच्चों से कि क्या उन्होंने अपने आप से पूछा है? कोई जरूरी कि हर लड़का कलेक्टर बने, एसपी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर। हमारे समाज में तो बस दो ही अहदे ज्यादा चलते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां हम बहुत आसानी से अपना करियर बना सकते। यही बात पहुंचाने के लिए मैं गाँव गाँव जाकर बच्चों को ये बता रहा हूँ कि तुम अपने अंतर मन की सुनो कि तुम्हारा मन किस में लगता है। क्योंकि एक फिल्म आई थी तारे जमीन पे, शायद आपको याद होगा, उस पिक्चर में इस बच्चे की दुविधा को बहुत अच्छे से समझाया गया। तो वही दुविधा को लेकर मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। क्योंकि हम अपने माँ के गर्भ में जैसे ही आते हैं तो 3 माह के पश्चात हमारा जेनुइन टैलेंट आ जाता है हमारे अंदर कि हम क्या होने वाले। तो इसके लिए DMLT टेस्ट भी करा सकते हैं। एक टेस्ट होता है फिंगर प्रिंट लेके वो कराते हैं, तो DMLT थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन उसमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर जेनुइन टैलेंट क्या है। जैसे मैंने अपना किया था तो बराबर मेरा प्रशासन और वकालत का क्षेत्र निकला, राजनीति का भी क्षेत्र निकला है मेरा, और उसमें सबसे ऊपर प्रशासन का था। ये तीन क्षेत्र मेरे निकले थे और मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये गुणों को मैं पहले से जानता था कि हाँ मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता का गुण है और मैं बहुत अच्छे से लोगों को लेके काम कर सकता हूँ, ये था। और वही चीज जब मैंने DMLT टेस्ट करवाई थी, और मैं चाहता हूँ कि यदि माता पिता यदि सक्षम है तो अपने बच्चे का DMLT टेस्ट जरूर करा ले, या नागपुर में होता है और उसकी जानकारी ले ले और करा ले, तो अपना बेस्ट जेनुइन टैलेंट पता चलता है। और मैं चाहता हूँ, मैं पूरे बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस काम में तुम्हारा मन लगता है उसको पकड़िए, आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। आप वो आपका बेसिक टैलेंट होता है, उसके टक्कर में कोई फायदा हो ही नहीं सकता। आप कभी जिंदगी में निराश नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका ऐसी संरचना बनी होती है उस टैलेंट की कि वो आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आपसे ज्यादा अच्छा हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन आपके जैसा नहीं हो सकता। अभी देखिए, राजनीति में बहुत नाम चलता था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, लालू यादव जी का, मेधावी होता, हालांकि जेल में है उनके कर्मों के कारण, लेकिन आपने देखा होगा उनका अपना खुद का एक टैलेंट है, उनका अपनी एक शैली है। जब वो पाकिस्तान गए थे तो लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे, हालांकि हम लोग के लिए तो बड़ा वो है, लेकिन अटल जी का देखिए, जब वो भाषण देने के लिए खड़े किए थे उनके टीचर ने तो रो दिया था अटल जी ने। तो क्या आपको पता है कि ये रोने वाला बच्चा एक दिन विश्व का, भारत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बनेगा? लेकिन उनके अंदर वो टैलेंट था, उन्होंने उस टैलेंट को पहचान लिया। क्योंकि एक दिन लोकसभा में पंडित नेहरू जी ने भी खुद कहा था कि 1957 के समय की बात है कि ये बच्चा आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये क्या था, उनके व्यक्तिगत गुण, उनके संस्कार, उनकी वो व्यक्तिगत क्षमता, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसी बाढ़ लगी है सब लोगों की कि ये कोचिंग वाला फोन आ रहा, उस कोचिंग से फोन आ रहा, भोपाल वाला यार, कई लोग तो यहाँ तक फ्री में एडमिशन की बात कर रहे हैं। अरे हर लड़का IAS और हर लड़का IPS नहीं बन सकता, उसके बेसिक टैलेंट को तो समझने दो, उसको मदद करो कि किस तरीके से अंदर तेरे अंदर टैलेंट है। तो मैं सब बच्चों से इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपके अंदर क्या अच्छा है ये आपका टीचर बताता है, उसको पता है, वो आपको पढ़ाते हैं। टीचर जो है ना बहुत जबरदस्त घटक होते हैं हमारे जीवन में, वो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है। दूसरी चीज, हमारी माता पिता, यदि हमारे माता पिता पढ़े लिखे हैं तो वो, और तीसरा घटक होता है कि हमारा मन जो है ना उस काम को, मतलब जब आप कहीं किसी क्षेत्र में जाते हैं और वहां पे आप देखिए कि आपको कौन सी चीज आकर्षित कर रही है, बस वही चीज आपका टैलेंट है, उसको ढूंढ लीजिए। क्योंकि मोदी जी, आपने श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी परीक्षा पे चर्चा विषय में कहा था कि आपके अंदर एक ऐसी परम सत्ता विद्यमान है जिसको आपको पहचानना है। क्योंकि आप खुद देखिए कलाम साहब के समय की, उनको जब वो देहरादून गए थे तो मिलिट्री ने उनको मना कर दिया था, लेकिन आप देखिए वो हार नहीं माने, उन्होंने अपनी उस परम सत्ता को, अपने आंतरिक शक्ति को पहचाना, और कालांतर में आपने देखा होगा कि वो देश के सबसे बड़े पद पे, राष्ट्रपति पद पे पहुंचे थे। तो ये जो चीजें, ये बच्चे तक नहीं पहुंच रही, बस उसको ये बताया जा रहा है कि हमारे ये कोर्सेस है, इतनी फीस माफ होगी, बस उसी मकर जाल में फंसाया जा रहा है। मैं तो इसलिए गांव-गांव में जाके बच्चों को बताया कि भाई तुम अपनी क्षमता को देखो, और हर बच्चे में जबरदस्त टैलेंट होता है, और वो इतनी जबरदस्त क्षमता के साथ अपनी मतलब परम सत्ता का यूज करके बहुत बड़ी चीजों को पा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर बने, इसके अलावा भी बहुत बड़े विकल्प है, हम उससे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते। जी सर।
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन में टाइम मैनेजमेंट का कितना महत्वपूर्ण होता है चैलेंज जीवन में, जो अभी भविष्य में जो बच्चे नई तैयारी में जुटे हैं, इनके लिए टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कुछ जानकारी दीजिए।
जी, देखिए टाइम मैनेजमेंट मतलब आपकी सफलता का निर्धारण, आप शिखर में होने वाले हो या आपके समय के, क्योंकि समय यदि आप यूज करते हो, अभी देखिए समय पर पढ़ाई में इतनी देना चाहिए, मैं तो इस पक्ष में विचार करता हूँ। समय स्वास्थ्य के लिए भी देना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, हम लोग फिटनेस बहुत अच्छी रहे। दूसरा, घूमने फिरने में भी हमको समय देना चाहिए, खेलने में समय देना चाहिए, मनोरंजन में भी समय देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि मान लीजिए हम 6-7 घंटे का हिसाब बनाते हैं या 5 घंटे का, 3 घंटे का हिसाब बनाते, तो उसमें से यदि हम लोग साल भर पढ़ाई करते तो आप समानुपात में समय दे सकते, लेकिन आप कम समय में पढ़ रहे हैं तो आपको अधिक समय थोड़ा पढ़ाई को दे के खेल कूद मनोरंजन, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ते हैं तो मस्तिष्क एक निश्चित अवधि तक काम करता है, उसके बाद वो इधर उधर विचरण करने लगता है। उसको कंसंट्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ध्यान। तो मैं अपने जीवन में भी खुद ये चीज देखा कि मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो ध्यान करता हूँ, और ध्यान करने के बहुत रिजल्ट है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले एक विषय वस्तु की श्रृंखला बना लेना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट क्या क्या है, फिर हमारे पास कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको ज्यादा दिक्कत देता है, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको हम कभी भी पढ़े तो जल्दी से पढ़ सकते। तो इस हिसाब से आप विभाजन कर लीजिए, तो जो विषय आपको थोड़े से कठिन लगते उनको पहले रख लीजिए, और ये एक धारणा आप छोड़ दीजिए कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। भाई आप सबसे बड़ी बात होती है आपकी नींद होना चाहिए, नींद नहीं हुई है और आप पढ़ रहे तो कोई मतलब नहीं। आप कंप्लीट नींद करिए, 6-7 घंटे एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, और उसके बाद बढ़िया आप उठ के सबसे पहले फ्रेश हो जाइए और ध्यान करिए, और ध्यान करने बाद थोड़ा सा टहलने निकल जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग तक यदि ब्लड जाता है, ये सबसे पहले करना है आपको एक्सरसाइज, ये वाला समय निकालना है सुबह का, फिर उसके बाद आप अपने पढ़ने के लिए दीजिए। तो उसमें पढ़ने के लिए ये करिए कि जो सबसे पहले आपको कठिन विषय लगे, या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपनी शुरुआत बहुत अच्छे से किसी सरल विषय से कर सकते, और जैसे ही मन आपका रम जाता है सरल विषय के साथ, फिर उस कठिन विषय को रखिए जो आपको दिक्कत देता है। हालांकि कोई भी विषय कठिन नहीं होता, हमारे करने से सब आ जाता है। तो आप समय कैसे निर्धारण करेंगे, तो आप क्या करिए, 5 दिन का शेड्यूल बनाइए सोमवार से शुक्रवार तक। तो उसमें 2 घंटा, यदि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटा नया पढ़ना है और 1 घंटा पुराने विषय को पढ़ने के लिए दीजिए। ऐसा सोमवार से शुक्रवार तक करिए। फिर शनिवार को क्या करिए, जितना आपने 5 दिन में पढ़ा उसको रिविजन के लिए समय दीजिए पूरा सप्ते भरे, और संडे के दिन पूरा जितना आपने रिविजन किया पढ़ा उसको प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश करिए। तो इसमें आपको पढ़ना भी हो रहा, रिविजन भी हो रहा, शनिवार को फिर रिविजन हो रही है और संडे को आपको पेपर हल करने का समय दीजिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपने जो पढ़ा उसको आपको लिखते आना चाहिए। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि कम पढ़ो अधिक सोचो और उससे अधिक लिखो, क्योंकि व्यक्ति को परफेक्शन तब आएगी जब आप लिखोगे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होती है लिखने वाली होती है। इसलिए अपनी चीजों को पढ़िए, तो सबसे पहले तो हमको पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए कि हम पढ़े कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो विषय आप पढ़ रहे हो उसके पुराने क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, और वो क्वेश्चन को देखने के बाद उस विषय को पढ़ना शुरू करिए, तो आप सटीक चीजों को पकड़ना शुरू कर देंगे। और एकदम से किसी किताब को मत पढ़िए, छोटे छोटे टॉपिक रहते तो टॉपिक को सरसरी तौर पर पढ़िए पहली बार बिना किसी लगा तनाव के, और शुरू से आखिरी तक चल जाइए। फिर सेकेंड टाइम में उसको धीरे धीरे पढ़िए तो आपके मतलब वो जो चीजें ना पकड़ में आने लग जाएगी, और थर्ड टाइम में फिर उसको ना अंडरलाइन करिए। जो आपने अंडरलाइन किया उसको 3-4 बार 10 बार जितनी बार पढ़ सकते पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से एक विषय से 4-5 बार पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता। और पढ़ना ही नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीज होती है उसको लिख के रखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, और अपने हाथ से लिखी हुई हर चीज हमको जल्दी याद होती है। और एक बहुत गलत धारणा है बच्चों के बीच में, किसी के नोट्स मिल जाए, भाई साहब किसी के नोट्स से कुछ नहीं होता। जिंदगी में जिसने भी सफलता अर्जित की है खुद के तैयारी से, खुद के नोट्स से की है। मैं खुद जो है अपने लिखी हुई चीजों को पढ़ता था, बड़ा आसानी से याद होता था। हम लोग कई कंपनियों के कोचिंग के नोट्स लाते थे तो नींद ही आती थी हमको तो, और जबकि उसी विषय की किताब को पढ़ के हम लोग अपने हाथ पढ़ के लिख के याद बहुत जल्दी हो जाता था, और अपनी खुद की एक समझ बनती है। तो पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए। अब समझना मतलब क्या, वो क्या कह रहा है। जैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं, तो फिल्म देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हीरो जो है शुरू में बहुत पीटता है खलनायक, बहुत मारता है उसको, लेकिन अंत में खलनायक हार के हीरो की जीत हो जाती। तो इसमें क्या समझ में आया आपको, आपको ये समझ में आया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मतलब शुरुआत में आपको कठिनाइयां आ सकती है लेकिन अंत में विजय आपकी होने वाली, ये चीज आपको समझ में आए। फिर जब आपको विषय ऐसा समझ में आता है, मतलब क्या है वो, क्यों है, इन चीजों को सवाल कर दीजिए कि पढ़ते समय सवाल करना चाहिए। हम लोग के अंदर ये चीज नहीं, हम बस परसेंटेज के पीछे लगे रहते 99.9। मैं कहता हूँ नहीं, यदि आपको आईएएस में पीएससी में जाना है तो आपके अंदर लॉजिक तार्किकता का निर्माण होना चाहिए। इसलिए जब भी आप सुबह पढ़ते हैं जो भी विषय पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद सबसे अच्छा तरीका है, पढ़ने के बाद आप 10 मिनट के लिए किताब बंद करके ये अपने आप से पूछे कि मैंने क्या पढ़ा, जो पढ़ा है उसका एक सार निकाल लीजिए। जैसे अपन पिक्चर 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं, और जब अपने दोस्त पूछता है यार पिक्चर की स्टोरी क्या है, तो उसको बता देते हैं हम लोग, बिल्कुल 3 घंटे की स्टोरी को एकदम 1 मिनट या 2 मिनट में पूरा सार बता देते। तो वैसे ही पढ़िए, और पढ़ने के बाद सोचिए कि इसका पूरा सार क्या है, इसका की पॉइंट क्या है, और जो की पॉइंट है उसे अंडरलाइन कीजिए, और जो है उसको लिख डालिए, फिर बार बार रिविजन कीजिए। मतलब नोट्स बना के जरूर पढ़िएगा।
सर जी,
हर बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है, लेकिन नोट्स बना के पढ़े और टाइम टेबल बना के पढ़े और रिविजन ज्यादा करें। जितना ही बार आप रिविजन करेंगे उतना परफेक्शन आपके जीवन में बहुत अच्छा आएगा, आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। और हमेशा याद रखना, रटना नहीं है, समझना है कि वो चीज क्या है, क्यों है। जैसे अभी देखिए गर्मी बहुत है, तो अपने आप से सवाल पूछो कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि भाई तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान फिर क्यों बढ़ रहा है, तो तापमान इसलिए बढ़ रहा है कि वनों की जो क्षमता है और उनको संतुलित रखने, आपको शायद पता होगा 20-22% पे भारत का पूरा पूरी कुल भूमि पे वन है, तो वनों वन जो है वो उष्णता को अवशोषित कर लेते हैं, हमारे वन घटते जा रहे हैं इसलिए गर्मी बढ़ती है। तो ऐसे जब आप लॉजिक करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा मनोरंजन मनोरंजन के तरीके से नक्शा बना के चार्ट बना के पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। और यदि इस तरह की पढ़ाई कभी करना है आपको जानना है तो बिल्कुल आप लोग हमसे मिल सकते हैं, हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। मैं गाँव जाके ये सब चीजें बच्चों को बता भी रहा हूँ, और पढ़ाई बहुत आसान है, दुनिया में सबसे आसान कोई काम है पढ़ाई, पढ़ाई कठिन नहीं होती, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं होशियार नहीं हूँ, होशियार पढ़ने से बनता है, बस इसका ध्यान रखिए।
सर जी आपसे एक अंतिम प्रश्न, अधिकतर छात्रों के दिमाग में ये चलते रहता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, तो उन छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है?
अरे मुझे ये बताइए, हम अभी मैदान में उतरे नहीं है, ग्राउंड में गए नहीं, बॉल खेला नहीं, फुटबॉल को हाथ लगाया नहीं, उसके पहले हम लोग पूर्वानुमान क्यों लगाते, हमको ये प्रवृत्ति बंद कर देना चाहिए। अरे जो होगा देखा जाएगा, देखिए पढ़ाई करने से कभी भी नुकसान नहीं होता, वो पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आती है, और हम केवल नौकरी के लिए को क्यों पढ़े, नौकरी केवल आजीविका का एक साधन है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने विषय की बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए, अच्छी जानकारी होना चाहिए, उसके उपयोग की क्योंकि आपको पता होगा एक भारत के बहुत बड़े उद्योगपति है, उन्होंने कहा था कि 98% युवा ऐसे है जिनको ज्ञान ही नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात थी, तो फिर इनको रोजगार कैसे मिलेगा। हम लोग केवल रटन विद्या और परसेंटेज के पीछे भागे, मैं देखा कि IAS एक बड़ी एग्जाम होती है भारत का, उसमें 12% बच्चे थर्ड डिवीजन के पास होते, आप सोचिए अभी कौन से बच्चे, कलेक्टर के पद को सबसे बड़ा पद माना जाता है परीक्षा को, IAS की परीक्षा को, लेकिन वो परीक्षा रटने वाली नहीं है, वो परीक्षा समझ वाली है, समस्याओं के निदान करने वाली, क्योंकि आप कलेक्टर के सामने बड़े अधिकारियों के सामने जब भी जाते तो समस्या लेके जाते, तो आपने देखा होगा वो समस्या के निदान के लिए बहुत अच्छा प्रयास करता है, बस ये गुण आपके अंदर लाइए कि वो समस्या क्या है क्यों है, आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, आप न्यूज देखिए, पेपर पढ़िए, लोगों के बड़े विद्वान लोगों के विचार पढ़िए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताब तो कोई पढ़ता ही नहीं, पढ़ना ही बंद हो गया, गाइड चल परीक्षा देते हैं, अब बताओ आप जब इस तरह की क्षमताओं से चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो यार हमको परीक्षा के लायक बनाना होता है, जब तक हम परीक्षा के लायक नहीं बनेंगे हमको सफलता नहीं मिलेगी, और ये मस्तिष्क में निकाल दीजिए, यदि मैं फेल हो रहा हूँ या और कोई फेल हो रहा है, हम फेल हो रहे हैं, तो समझ लेना वो हमारी क्षमता में कमी को दर्शाता है, ना कि सिस्टम की कमी, सिस्टम में कभी कोई कमी नहीं होती, सिस्टम बहुत अच्छा होता है, काम करने वालों की सही शिद्दत होनी चाहिए, इसलिए आप अपने दिमाग में रखिए मत सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप जब बड़े स्तर की तैयारी करते हैं तो अपने आप आपको छोटी एग्जाम निकालने में दिक्कत नहीं जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा पास कर जो आने वाले समय के लिए तैयार हो रहे उन छात्रों के लिए आपने अपना मार्गदर्शन दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुलकर।